नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल की दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ जी राजा रमन। राजा रमन जी, आपका स्वागत है।
थैंक यू सो मच शक्ति।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला कल से शुरू। विमेंस प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को हराया। एक अन्य मुकाबले में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलों के महत्व पर बल देते हुए कहा, खेलों के मैदान से राष्ट्र निर्माण किया जा सकता है और खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 आज केंद्र शासित प्रदेश द्वीप में संपन्न। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला कल से शुरू होगी। श्रृंखला का पहला मैच कल वडोदरा स्थित बीसीए स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। एक रिपोर्ट।
भारतीय क्रिकेट टीम 2026 की अपनी पहली श्रृंखला के लिए तैयार है। भारतीय टीम की नजरें T20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ इस श्रृंखला में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने पर हैं। वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी 3 एकदिवसीय और 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए भारत पहुंच चुकी है। कल श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारतीय क्रिकेट फैंस को एक बार फिर मैदान पर रोको यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी देखने को मिलेगी, जो पिछले साल के अंत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर चुकी है। इन दोनों खिलाड़ियों की नजरें 2027 क्रिकेट विश्व कप के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत करने पर भी हैं। चोट की वजह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज से बाहर रहे शुभमन गिल की वापसी हो रही है। वहीं अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 120 एकदिवसीय मैच हुए हैं, जिनमें भारत ने 62 जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैचों में जीत हासिल की है। एक मैच टाई रहा है जबकि 7 मैचों का परिणाम नहीं आया है। इस श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 14 जनवरी और तीसरा 18 जनवरी को खेला जाएगा। ऐसे में शुभमन गिल की अगुवाई में मैन इन ब्लू की नजर वडोदरा में कीवियों पर शानदार जीत दर्ज कर श्रृंखला में बढ़त बनाने पर होगी। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
तो वापस नए साल में आगाज शुरू हो चुका है क्रिकेट मैचों का और सबकी नजर, जैसा हमने कहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली।
हमेशा ही होती है। पिछले 10-15 सालों में ऐसे खिलाड़ी कम ही मिले हैं जो शानदार बल्लेबाजी करते हैं और फिर अगुवाई भी, एज कैप्टन दे हैव बीन ब्रिलियंट, लीडरशिप रही है। अब आज की तारीख में कप्तान नहीं है दोनों, लेकिन लीडर जरूर है और नजरें तो रहेंगी। लेकिन ये टीम स्पोर्ट है शक्ति, और हमको दोनों टीम पे नजर डालनी होगी। शायद न्यूजीलैंड कमजोर है, जो टीम वेस्ट इंडीज को हराई थी 5-0 से, वो टीम आज यहां पे है नहीं। न्यूजीलैंड की टीम कई सारे खिलाड़ी या चोट से उभर कर आ रहे हैं या चोटिल हैं, या फिर कुछ खिलाड़ी न्यूजीलैंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहे थे, जैसे केन विलियमसन जैसे महान प्लेयर, वो टीम से बाहर है। वो साउथ अफ्रीका में T20 लीग खेल रहे हैं वहां पर।
जी बिल्कुल, कप्तान मिचेल सेंटनर हो, टॉम लेथन हो, केन विलियमसन का आपने नाम लिया, रविंद्र सचिन हैं और जैकब डफी की कमी जरूर खलेगी इस टीम को इतने बड़े और इतने अहम दौरे पर T20 विश्व कप से महज 1 महीने पहले।
लेकिन ये युवा खिलाड़ी जो आए हैं, हालांकि उनके कप्तान का 35 साल का उम्र है ब्रेसवेल का, लेकिन जो युवा खिलाड़ी है उनके लिए एक मौका है भारत के ग्राउंड को पे अनुभव पाना, यहाँ के खिलाड़ियों के साथ कम्पीट करना, उनके लिए एक अच्छा मौका है न्यूजीलैंड के लिए। और शायद वो हमेशा फाइटर्स रहे हैं, न्यूजीलैंड वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, और हम भूल नहीं सकते कि पिछली बार जब वो भारत आए थे टेस्ट सीरीज जीत कर गए थे, तो दे आर फाइटर्स और भारत को कहीं कम नहीं आंकना चाहिए न्यूजीलैंड की टीम को। लेकिन भारत के पास वो अवजार है, वो स्ट्रेंथ है टू बीट न्यूजीलैंड इन द सीरीज कॉम्प्रिहेंसिवली।
जब हम ऐसे समय में खड़े हैं जहां पे T20 विश्व कप हमसे महज लगभग 1 महीने की दूरी पर है, अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा को हटा दिया जाए, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी T20 नहीं खेलेंगे, श्रेयस अय्यर या फिर यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, के राहुल, जो इस तरह के खिलाड़ी हैं, इनके लिए कितना बड़ा मंच होगा और प्लेइंग 11 में इनको सेट करना कितना चुनौतीपूर्ण यहां से होगा?
तो दोनों अलग चीज है, मेरा ये मानना होगा कि क्योंकि शुभमन गिल यहां पे कप्तान है और वो T20 में टीम में शामिल नहीं है, तो इसको अगर प्रिपरेशन मानेंगे तो गलत होगा, इसको आप इंडिविजुअल सीरीज मान के चलिए। प्लेयर अगर ये मानसिकता से उतरेंगे कि इस सीरीज को जीतना है और इस मैच को इस मैच में अच्छा खेलना है, तब प्रदर्शन सही होगा। अगर ये बहुत ही आगे की सोचे, T20 वर्ल्ड कप का सोच के खेलते हैं, तो वो दृष्टिकोण शायद गलत होगा।
जी बिल्कुल, तो यहाँ पे खिलाड़ियों को कहा जा सकता है कि उनको अपने हाल पर और इस सीरीज के लिए छोड़ा जाए, ताकि वो खेल जो सभी देखना चाहते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिला भारतीय टीम का, वो एक बार देखने को मिले। और कई और रिकॉर्ड भी होंगे जिस पे सबकी नजर होगी। लोग एक तो देखना चाहते ही हैं कि कोहली के 100 शतक और 2027 के लिए उनकी दावेदारी कितनी अहम होगी। महज 25 रन दूर है सबसे तेज 28,000 रन बनाने से, और एक शतक और बनाते ही न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक शतक बनाने वाले बल्लेबाज भी विराट कोहली यहां से बन जाएंगे।
कोहली के बल्लेबाजी के बारे में जितना तारीफ करें उतना कम ही होगा। बहुत ही शानदार बल्लेबाज रहे हैं टेस्ट मैचेस में, T20 में, लेकिन अब वो सिर्फ वनडे इंटरनेशनल खेलते हैं और अगले साल तक खेलेंगे नहीं खेलेंगे कहना मुश्किल है। एक साल का टाइम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनके फैंस तो जरूर चाहेंगे कि विराट कोहली अगले साल का वर्ल्ड कप खेलें जरूर।
जी बिल्कुल, उनके फैंस भी चाहेंगे और भारतीय क्रिकेट फैंस भी चाहेंगे कि भारतीय टीम जो है श्रृंखला में शुरुआत से ही एक मजबूत पकड़ लेकर के आगे बढ़े। विमेंस प्रीमियर क्रिकेट लीग के मुकाबले में आज नवी मुंबई में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 10 रन से हरा दिया। गुजरात जायंट्स के दिए 208 रन के लक्ष्य के जवाब में यूपी की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 197 रन ही बना सकी। वहीं एक अन्य मुकाबले में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स इस समय आमने सामने हैं। तो यहां की भी बात कर ली जाए, पहला मुकाबला आज यूपी वॉरियर्स को हार का सामना करना पड़ा, हालांकि आखिरी तक टक्कर दी, 10 रन का अंतर फिर भी रह गया।
T20 में 10 रन काफी होते हैं, बड़ा बड़ा गैप माना जाता है। कॉम्पिटिटिव मैच फैंस हमेशा चाहेंगे, लेकिन जिस तरीके से गुजरात जायंट ने खेला है, पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत शानदार स्कोर खड़े किया, उसके बाद उसको डिफेंड करना अच्छी बात है, लेकिन अभी तो शुरुआत ही दिन है विमेंस प्रीमियर लीग में। जैसे जैसे टाइम जाएगा, यूपी की टीम चाहेगी कि वो और अच्छा प्रदर्शन करें और फिर मैच जीतने लगे।
जी, वहीं एक अन्य मुकाबले में इस समय मुंबई इंडियंस ने 16वें ओवर में 3 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। पिछले साल चैंपियंस की दौड़ में थे और फाइनल मुकाबले में मुंबई ने बाजी मारी थी, आज वापस आमने सामने हैं दोनों टीमें।
अच्छी बात है, मुंबई इंडियंस शायद एक अच्छी शुरुआत हुई उनके लिए, लेकिन सीजन लंबा है और इन सबको अच्छा प्रदर्शन करते रहना पड़ेगा। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के महिलाओं का भी लीग हो रहा है फिर से, और फिर क्योंकि हाल ही में इंडिया ने विश्व कप जीता है, अटेंशन रहेगा और फैंस भी बहुत ज्यादा तादाद में जाएंगे और मैचेस को सपोर्ट करेंगे और टेलीविजन में देखते रहेंगे, और हम तो आकाशवाणी में बात जरूर करेंगे विमेंस प्रीमियर लीग।
जी बिल्कुल, हम लोग लगातार नजर बनाए रखेंगे विमेंस प्रीमियर लीग पर। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलों के महत्व पर बल देते हुए कहा कि खेल के मैदान से राष्ट्र निर्माण किया जा सकता है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि खेल एक संस्कृति है और इसके द्वारा बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। आइए सुनते हैं हमारी सहयोगी प्रियंका अरोड़ा से श्री मांडविया की विशेष बातचीत।
स्पोर्ट्स एक कल्चर है, स्पोर्ट्स एक जीवन शैली है, तो खेल एक नेचर है और खेल के द्वारा हम बहुत कुछ चीजों को हासिल कर सकते हैं। हमारी हेल्थ को तो स्वच्छ रख ही सकते हैं, लेकिन खेल से आप में धैर्य का संस्कार डेवलप होता है, खेल से आपको हार और जीत दोनों को पचाने की क्षमता बढ़ती है। तो खेल एक खेल है और खेल के मैदान से हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, ऐसा भी मेरा मानना है। खेल का जीवन में बहुत महत्व है, हम सब इसलिए ही मोदी जी ने खेलो इंडिया कहा। मैंने संडे ऑन साइकिल का इनिशिएटिव लिया। संडे ऑन साइकिल एक प्रतीक है, लेकिन हमें लोगों को फिटनेस के साथ जोड़ना है, खेल के साथ जोड़ना है, उसके प्रतीक के रूप में हम संडे ऑन साइकिल करते हैं। ये सब एफर्ट आने वाले दिनों में हेल्दी नेशन और वेल्दी नेशन बनाएगी।
सरकार लगातार प्रयासरत है कि बुनियादी स्तर पे जो जिले अभी तक अछूते थे, जहां पे बड़े आयोजन नहीं होते थे, वहां तक खेल के मैदानों का और इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया जाए और उन खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान किया जाए। इस पूरे आयोजन को और खासकर खेलो इंडिया को आप किस तरीके से देखेंगे?
शक्ति, बहुत बड़ी बात है। कल एक बहुत बड़े पैमाने पे स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था, गवर्नेंस कॉन्क्लेव था ये, अहमदाबाद में हुआ है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स होना है, अहमदाबाद में फोकस ज्यादा होने लगा है, अच्छी बात है। और वहां पे जो कॉन्क्लेव में स्पोर्ट्स सचिव ने कहा कि हम कोचेस की ओर ध्यान देंगे, जिस तरीके से कोचेस का रैंकिंग होगा, चाहे ग्रास रूट में हो या इंटरमीडिएट लेवल में हो या एलीट लेवल में हो, फिर वहां पे भी ग्रेडिंग होगा। एक ब्यूरो बनाएंगे जहां पे कोचेस का रैंकिंग बनाया जा सकता है, फेडरेशन की रैंकिंग होगी। उन्होंने ऐसी बात कही, सरकार की तरफ से कही, भारतीय सरकार की तरफ से, कि अगर हमको 2036 में 30 या 40 मेडल लेने हैं और फिर 2048 में, जो हमारे 100 साल पूरे होंगे आजादी के, तब हम अगर 60 या 70 मेडल के करीब हासिल करना हो, उसके लिए अभी काम शुरू करना होगा। आई थिंक वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। अच्छी बात है, कोचेस की ओर ध्यान दिया जा रहा है, ग्रास रूट स्पोर्ट की ओर ध्यान दिया जा रहा है। हो सकता है कि अगले 10-15 साल में भारत का नाम और भी रोशन होगा। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑलरेडी रोशन कर चुके हैं ओलंपिक्स में और बाहर, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि सरकार का ध्यान स्पोर्ट्स की ओर बढ़ता जा रहा है।
जी, लगातार आपने और बहुत एक अच्छी बात भी कही कि कोचेस के ऊपर और फेडरेशंस के ऊपर भी सरकार का लगातार ध्यान है और एक बेहतर पारदर्शिता किस तरीके से फेडरेशंस के संचालन में तय की जाए उसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।
बिल्कुल शक्ति, ये मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास प्रशिक्षक ना हो, गुरु ना हो, तो चेले कहां से आएंगे
जी।
ये दिक्कत शायद भारत की लगातार पिछले 60-70 साल में देखा है। अभी आज भी आप देखिए, विदेशी कोच हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं, चाहे वो हॉकी में हो या शूटिंग में हो या रेसलिंग में हो या बॉक्सिंग में हो या कोई भी स्पोर्ट ले लीजिए, विदेशी कोच बहुत ज्यादा आते हैं। ये इसलिए कि हमने हमारे कोचेस पे काम कम किया है, और मुझे लगता है कि अभी जो जोश है, इस जोश को अगर बरकरार रखेंगे और फिर जो सपने हम देख रहे हैं कोचेस को अच्छा बनाने का, फिर ग्रास रूट स्पोर्ट को डेवलप करने का, स्कूल और कॉलेज स्पोर्ट डेवलप करने का, जो खेलो इंडिया के माध्यम से हो रहा है, भारत का नाम और भी आगे बढ़ेगा।
जी बिल्कुल, हमने खेलो इंडिया की बात की, तो इसी कड़ी में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 आज केंद्र शासित प्रदेश दीव में संपन्न हो गए। खेलों में कर्नाटक 3 स्वर्ण 2 रजत और 6 कांस्य पदक मिलाकर कुल 11 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। वहीं तमिलनाडु 3 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ दूसरे तथा मणिपुर 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इस वर्ष इस आयोजन में देश के 25 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 1100 से अधिक खिलाड़ियों ने 6 मेडलों और 2 डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट्स में हिस्सा लिया। तो हम लोग लगातार खेलो इंडिया की बात कर भी रहे थे, और यहाँ पे अगर देखा जाए बीच गेम्स ऐसे इवेंट जिनके लिए मंच मिलना भारत में अब तक एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, खिलाड़ी शायद इस वजह से सहभागिता भी नहीं करते थे, लेकिन 1100 से अधिक खिलाड़ी अगर आकर के रस्सा कस्सी और सेपक टैक्रो और सॉकर जैसे इवेंट्स में अपनी चुनौतियां दे रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि सही दिशा में जा रहे हैं खेल।
शक्ति, आपके रिपोर्ट में आपने जिक्र किया कि मणिपुर को तीसरा स्थान मिला है। मणिपुर में कोई बीच नहीं है, बीच गेम्स हालांकि हमारे मन में यह बैठता है कि कोस्टलाइन से निकल के आएंगे, बीच होगा, लेकिन मणिपुर से आना फिर वहां पे तीसरा स्थान प्राप्त करना पूरे भारत में, ये दिखाता है कि भारत के खिलाड़ी अब तैयार है कोई भी खेल खेलने के लिए और अच्छे पैमाने में खेलने के लिए।
और अब बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां पर मलेशिया बैडमिंटन टूर्नामेंट सुपर 1000 में भारत का अभियान आज समाप्त हो गया। आज सेमीफाइनल में पीवी सिंधु क्वालालंपुर में चीन की वांग झी जी से 16-21 15-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में महिला वर्ग के फाइनल में कल केरल का सामना रेलवे की टीम से होगा। आज खेले गए पहले सेमीफाइनल में केरल ने हरियाणा को 3-0 से हराकर फाइनल में स्थान बनाया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में रेलवे ने राजस्थान को 3-1 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। तो यहां पर भी राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल की एक बड़ी प्रतियोगिता चल रही है उत्तर प्रदेश में, और एक बेहतर मंच लगातार हम इस पर बात कर ही रहे हैं आज मिलता हुआ नजर आ रहा है इस खेल को भी।
बिल्कुल, और ये हो रहा है वाराणसी में सिग्रा स्टेडियम, जो रीडेवलप हुआ है। ये शायद पहला नेशनल लेवल टूर्नामेंट है सिग्रा स्टेडियम में। अच्छी बात है कि भारत में कई जगह विभिन्न खेलों का आयोजन हो रहा है। हमारी सोच बदली है, हम पॉजिटिव होते जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, और विकेंद्रित ये जो पूरा ढांचा तैयार हो रहा है जहां पे सिर्फ राजधानियों तक ही आयोजन सीमित नहीं है, वो अलग अलग स्तर पे पहुंच रहे हैं और खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच प्रदान कर रहे हैं। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। राजा रमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए और तमाम खबरों पर आपने हमसे चर्चा की।
थैंक यू सो मच शक्ति।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।